अमली बातें कीजिए। आज मेरे साथ भी एक बच्चा बैठा हुआ है, उसको मैंने थोड़ा सा मौका देना है बीच में दोनों सेशंस के। एक बच्चा है जो मेरे साथ आजकल रह रहा है, हम जहाँ हैं हमारे होस्ट हैं उनके बच्चे हैं। आपको तो आज के इस लेक्चर के बिल्कुल शुरू 10-15 मिनट पहले से बैठा हुआ है मेरे साथ। ये अपनी माँ को अपने घर वालों को क्या कहता है? कहता है कि मैंने भी पढ़ाना है, मेरा नाम लेता है। इसने बड़ी जुरत भी की है माशाल्लाह। वो आप देखें अभी वो हंस रहा है तो मैं भी हंस रही हूँ। तो इसको भी आपसे कुछ कहना है। तैयार है बेटा आपकी? इसने नॉर्वेजियन में आपके लिए कुछ तैयार किया, ये सुने तो फिर देखें कि इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी क्या होती है। यानी जब कोई आपसे इंस्पायर्ड होकर 1-1.5 घंटा बैठ रहा है कि सिर्फ इसलिए कि मैंने भी यही काम करना है, ये काम कीजिए। आप माँ है ना, यह सारा सेशन टीचिंग पे क्यों जा रहा है? क्योंकि आप सारे एक इदारे से मुंसलिक हैं, लेकिन यही सेशन माओ के लिए। माएँ टीचर्स बने, देखिए उनके बच्चे उससे पहले टीचर बनते हैं। और बाप मुबल्लिग बने, बच्चों को पैसे गिनने से ज़्यादा नेकियां गिनने की फिक्र लगती है। तो बेटा आप बिल्कुल ऐसे सोचो कि आप सलाम करो, ये नोश में बोलेगा, बाद में मैं आपको इंशाल्लाह इसकी बात कराऊंगी। गो हेड करो आंटी इसको।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الشارع برودر أسسترة إسلام يا ويل يا نادل مدرة نوبن فوتين نو سم رمضان أر أوفر هار فليرة بيجنت أي كم ساي تل باكة تل سن سن تيد لجيرة لجيرة Rutine, vi var flinke til å bli våre alle obligatoriske.
Mashallah, jazakallah khair beta. आप देखिए कि इस बच्चे ने नॉर्वेजियन में कहा। बेटा आपने ये बहुत अच्छा पढ़ा है, आपको क्या समझ आई सारे से? ये चले भाई, इसका बड़ा भाई है।
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan is over. People have been coming back to sins. Like, they're coming back to sins. Like, they're going to, like, you know, singing and listening to songs and doing haram stuff. Going out, you know. Like, boys, like, they're going out to getting addicted to drugs and stuff. So, basically, in Ramadan, we were, like, we were good people. We were like practicing Muslims, and then we used to pray more. But now we should promise that basically in Ramadan, whatever we did, we should promise Allah that we will do it after Ramadan as well. And we should promise Allah whatever we do now in Ramadan, that we will do it after Ramadan as well. But some people, they will, after Ramadan, they will basically get out of deen. Because they don't want to, like, do roze, they don't want to, like, pray Quran. The only thing they just wanted is, like, to their parents to watch them. Oh yeah, this good is very this boy is very good, he does that. But when Ramadan is over, he will come to his sins back. He will come to his sins, basically, when he does those addicted stuff. And when he watches the TV, and when he watches bad stuff, and then he actually isn't afraid of Allah, but he's afraid that his parents will say something. So Amar actually wanted to say that we should actually basically do more. We should, like, continue with those stuff we did in Ramadan. We should continue with those stuff right now.
Jazakallah khair. Ab ye inki ammi aapko Urdu mein batati hain ki ye pehle Norwegian mein aur dusre ne English mein bataya. To ab zara ji aap baat kar sakti hain. Bole.
Ji assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ने लिखा है कि माय ब्रदर एंड सिस्टर, यानी मेरे बहनों और भाइयों जो इस्लाम में हैं, कि मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि अब आप लोगों को पता है कि रमजान ओवर हो गया है, तो सारे अपनी रूटीन में वापस आ चुके हैं। रमजान में तो हम कुछ बहुत ज्यादा नेकी के काम करते थे, तो ये हमने ये करना है कि रमजान के बाद भी उसको कंटिन्यू करना है। जो 5 वक्त की नमाज है उसको लाजमी पढ़ना है, और भी जो अच्छे अच्छे काम है वो करने हैं। और ये कहना है, उसने एंड में ये कहा कि अल्लाह सुब्हान तआला हमसे कुछ चाहते हैं, वो ये कि हम उनकी इबादत करें, तो इंशाल्लाह ताला हम सब ने उनकी इबादत करनी है। तो इसका ये छोटा सा था, तो लेकिन जो अयान ने थोड़ा ज्यादा अपने से लगा के और कुछ माशाल्लाह काफी कुछ बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है कि अयान का नॉलेज काफी बढ़ रहा है उस शादी के साथ रह रहे के, अल्हम्दुलिल्लाह।
जज़ाकअल्लाह खैर व हसन जज़ा। आप देखिए कि ये बच्चे जो देखते हैं ना वही करते हैं। असल ये सारा एक तो इस बच्चे की बड़े दिन का मेरे ऊपर बोझ था, तो मैंने इसे कहा कि इसको मैं वीकेंड पे ले लेती हूँ। वीकडेज पे बहुत टाइट स्केजुअल होते हैं, तो लेकिन यह है कि आप इस सारे हिस्से को सोचें, माँ कुरान पढ़ेगी तो बच्चे भी कुरान पढ़ेंगे, अगर कोई गाना गा रहा होता घर में तो ये गाने गाता मासूम। इसी तरह से आप देखिए कि असल में अल्लाह के नबी ने ये जो अमली नमूना बन के दिखाया है ना, जिस पे हम ये सारी बात कर रहे हैं, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे वही बनेंगे जो हम हैं। आप जो अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं वो खुद बन जाइए, आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। पहले की दौर की माएँ इतनी मेहनत नहीं करती थी कि अपने बच्चों को ले लेके इधर से उधर फिरे, इतने तो उस वक्त कोर्सेज ऑफर नहीं होते थे, क्योंकि उस वक्त की टीचर माँ खुद थी। माँ का, बाप का, इन सारी चीज़ों में आना पढ़ना, तो ये सब कुछ उनके लिए बहुत ज़रूरी था। तो आप दुआ भी करें कि इन बच्चों को अल्लाह वाकई वहाँ ले जाए जहाँ हम नहीं। इसने एक बड़ी जुरत की, अपने घर में ही फ्लायर निकाल कर, कोई अपने लैपटॉप पे डाउनलोड कर करा के, तो मेरे नाम काट के अपने नाम लिख दिए। अब वो सारे नूरुकरन से लिए और जो कुछ भी किया होगा वो एक अलग कहानी है, लेकिन मैं ये सोच रही थी ना कि इस बच्चे को जो मिला इसने वही लिया ना, तो बस इस चीज़ को सामने रख कर आपने, मैंने अपने घर वालों, अपने बच्चों और अपने बड़ों पे बात करनी है। आई विश, लेकिन देखिए सिर्फ किताबी बातें, पढ़ना पढ़ाना आज का हल नहीं है। आज लोगों को वो किरदार नहीं दिखता जो मोटिवेट करे, जो उसके आगे लेकर चले। और ये बकायदा कहता है कि मेरी स्लाइड्स बनाओ, मुझे यूट्यूब पे आना है, मुझे 41 स्लाइडें चाहिए, और मैं अपनी तस्वीर नहीं दूंगा क्योंकि उस्ताजा की तस्वीर नहीं आती, और पता नहीं क्या कुछ। तो अब इसको क्या पता कि ये क्या कर रहा है, लेकिन हमें तो अकल है ना। तो जितना ज़्यादा अपने बच्चों के ऊपर, अपने साथ वालों के ऊपर आप दीन का असर रख सकें वो करें। अल्लाह के नबी सल्लम की ये बहुत बड़ी खूबियाँ थी, करके दिखाया, करके दिखाइए, बस इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती। और जब हम एक रोल मॉडल बनकर अपने बच्चों के इर्द गिर्द घूमेंगे तो बात बनेगी। नेक्स्ट सेशन पे ले चलती हूँ जो हमारा प्रैक्टिकल टिप्स का होगा, यानी आप कह सकते हैं कि अल्लाह के नबी और सहाबा जैसा किरदार बनने के लिए करना क्या पड़ता है। तो 5 चीज़ें जो किसी भी इंसान के अंदर तब्दीली ला सकती हैं। मैंने इसी से शुरू की कि यस आई कैन चेंज। ये जो लोग कह लेते हैं ना कि मैं अब बदल नहीं सकती, मैं बूढ़ी हो गई, मेरी तो अब हड्डियाँ हो गई, अब लिखा नहीं जाता, तो देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो नबूवत का आगाज़ ही 40 साल की उम्र से हुआ। तो आप में से, मेरे में से जिसकी उम्र 40 साल या उससे ऊपर नीचे की है, उसके करीब के वक्त में, तो यही तो बेस्ट टाइम था। क्यों हर नबी को अमूमन नबूवत से पहले 40 साल सब्र कराया गया? और मैं एक स्कॉलर हैं, बहुत ही माशाल्लाह सीधी सी बात करते हैं, कराची से हैं, तो वो कहते हैं कुरान समझ ही 40 साल के बाद आता है। तो मैं कितना अरसा इसी चीज़ के इंतज़ार में बैठी रही कि मुझे 40 साल का होने के बाद देखना है कुरान क्या समझ आता है। और जब आप इस मज़े को देखते हैं तो बहुत इंजॉय करते हैं। तो बहरहाल आप देखिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारी ज़िंदगी में आती हैं कि जिसके बारे में हम खुद भी नहीं जानते कि इट्स पॉसिबल। तो ये जो तब्दीली का नुक्ता आगाज़ है ना, लिखिए सबसे पहली चीज़, आज के दौर की ज़रूरत नहीं, हर दौर की ज़रूरत, के लोगों की सोच बदल दी जाए, सोच की तब्दीली। अंबिया कराम ने जो बहुत बड़ा काम किया वो सोच बदली थी। हज़रत उमर फारूक की सोच बदली ना तो ज़ुबान बदल गई। आप देखिए कि मक्का के अंदर जितने भी लोग जमा हुए, 100 कुछ थे तकरीबन, जो मक्का से मुसलमान नबी सल्लम के साथ निकले थे, तो आप देखिए उनकी सोच बदली। सोच अच्छी भी होती है तो बुरी भी होती है, ये भी याद रखिए। अच्छी सोच वाले अच्छा काम करते हैं, बुरी सोच वाले बुरा काम करते हैं। सोच बदल दें लोगों की तो अल्टीमेट उसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा कि उनके नज़रियात बदल देंगे। बस आप देखिए कि जिसको आप कहते हैं ना स्कूल ऑफ थॉट चेंज हो जाता है। बस एक शख्स बेकार ज़िंदगी बसर करता है, चोरी चकारी करता है, ये उसका एक अकीदा है, ये उसका एक नज़रिया है, उसकी एक सोच है। आप उसको फालतू चीज़ों से निकाल कर इल्म पे लगा दें, कल वो दूसरों की खिदमत करने वाला बन जाएगा। फिर इसी तरह से आप देखिए जब सोच बदलती है तो नज़रियात बनते हैं, नज़रियात अच्छे भी होते हैं बुरे भी हैं। अच्छी सोचें अच्छे नज़रियात को जन्म देती हैं, अच्छी सोचें अच्छे नज़रियात पे आती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि इंसान के अकायद और उसके नज़रियात उसकी शख्सियत साजी की बुनियाद है। लोगों की सोच अच्छी कीजिए, नज़रियात अच्छे हो जाएंगे, नज़रियात अच्छे होंगे तो रवैये अच्छे हो जाएंगे, और रवैयों की तब्दीली का नाम ही सेल्फ ग्रूमिंग है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें बहुत कामयाब थे। किसी ने कहा कि अगर तुम फल बदलना चाहते हो ना तो जड़ें बदल दो। ये हमारी जड़ें हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो है ना, ये हमारे इस्लाम की जड़ें हैं। अकायद और नज़रियात इंसान की किरदार साजी करते हैं, जिससे फिर हमारे रवैये बाद में बदलते हैं, और रवैये बदलते हैं तो लिखिए फिर अमल बदलता है। यानी एक ये चेन रिएक्शन है, सोच बदली तो नज़रियात बदलेंगे, नज़रियात बदलते हैं तो रवैये बदल जाते हैं, और जब किसी कौम के रवैये बदल जाते हैं ना तो फिर उनके अमल बदल जाते हैं। और अमल की तब्दीली के बाद एक और तब्दीली जो इस वक्त आपको मुझे अपनी नज़र में रख के दीन के काम करने हैं, वो क्या कि फिर नतायज बदल जाते हैं। आज क्या नतीजा दुनिया में लिखा हुआ है, उम्मते मुस्लिमा को एक बड़ा खूबसूरत नाम है। नतायज अगर बदलना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि मुस्लिम शुड बी वर्ल्ड लीडर, आप मुस्लिम्स को लीडर्स बना के देखना और सुनना चाहते हैं ना, तो उसके लिए लोगों की सोच बदली है। आज हमारी सोच गैर इस्लामी है, हमीयतुल जाहिलिया हमारी सोच का एक बहुत ही ना नज़र आने वाला हिस्सा बना हुआ है। नतीजा क्या होता है कि हमारे पास काम नहीं है और हम फिर बिल्कुल उस चीज़ को दूसरी तरफ ले जाते हैं। फिर आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की जो माएँ थीं, अगर आप उनको सामने ले आइए, क्या थी उनके पास स्किल्स, किस कॉलेज या किस स्कूल में जाते थे बच्चे, कौन से ब्रांड का जूता पहनते थे, किस तरह का बैग लेते थे। लेकिन आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल आप कह लीजिए मोविज़ और माज़ को ले लीजिए सामने तसव्वुर में ले आइए, या आप कह लीजिए कि हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को ले आइए, माओ ने बच्चों को अच्छी सोच दी। जब आप किसी भी सोसाइटी के अंदर रहते हुए अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं, मतलब मैं अपना इन्फ्लुएंस डालना चाहती हूँ, मैं अपने ऊपर बात करती हूँ, तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे अपना वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बताना चाहिए। ये लिखिए, आपको फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल टिप्स होंगी। जिन पर मैं असर डाल सकती हूँ मैं उन्हीं पे असर डालूंगी ना। मतलब जैसे भी आपने एक बच्चे की बात सुनी, तो ये बच्चा मेरे करीब था, तो कोई चीज़ इसने खुद पिक की, कुछ शौरी या बेशौरी तौर पर उसको मिली, कुछ हमने बताई, तो असर डल गया ना। और अगर इससे भी अच्छे बंदे के साथ रहेगा तो इससे भी अच्छा बन जाएगा। तो सबसे पहले अपना सर्कल देखिए, मैं किन पर असर डाल सकती हूँ, मेरी पर्सनैलिटी क्या, फलां फलां जो मेरे घर वाले हैं, मेरे पोते, मेरे नवासे, मेरे बच्चे, घर के मुलाजिम, शौहर, बीवी, बहू, क्या उन पे मेरा एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। याद रखिएगा, जिन लोगों के दिलों में आपकी कदर नहीं है ना, वो कभी आपसे सोने जैसी चीज़ भी नहीं लेंगे। हम तबलीग के दौरान ये बात भूल जाते हैं, हम पहले रैपो नहीं कायम करते, बीच में एक ताल्लुक नहीं बनाते और डायरेक्ट लोगों को नसीहतें करने लग जाते हैं। अल्लाह के नबी ने बातें नहीं की, करके दिखाया। आप बच्चों से कितना प्यार करते थे, आपकी कमर पे बैठ जाते थे आपके बच्चे, आप नमाज लंबी कर लेते थे, आपका सजदा लंबा हो जाता था, हम होते डांट के उसको बाहर भाग दे कि बच्चे मस्जिद में नहीं आते। नहीं, पहले ताल्लुक बनाइए, अल्लाह से ताल्लुक बनाना है लोगों का, तो आप पहले उनका ताल्लुक अपने साथ बनाइए। आप देखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला ने दिलों को फतह करना सिखाया था अपने नबी को। असल खैर ये नहीं है कि आप लोगों को जाकर कुरान की आयतें याद करवाएं, असल खैर ये कि आप उनके दिलों में कुरान की आयतों से मोहब्बत डाल दें, और जो दिलों को मोहले वही फातिहे ज़माना। असल बादशाह वो नहीं है जो सरहदों की सरहदें कॉन्कर करके अपने मुल्क की सरहदें बढ़ाए, असल बादशाह वो है जो दिलों को मुतासिर करे, जिसके जाने के बाद लोग उसका जिक्र खैर करें। आप रोटी खिलाएं, किसी को भी खिला दें, लेकिन असल बात यह कि उस वक्त खिलाएं जब आपको खुद भूख लगी हो। फिर आप देखिए कि मैंने अल्लाह के नबी की पर्सनालिटी से जो चीज़ें सीखी उसमें एक क्या है कि आपका अंदाज़ बड़ा वामी था। मेन लेवल पे बात कीजिए, ह्यूमन लेवल पे। आज बाज़ दफ़ा जब हम दीन के नाम पे कोई बात करते हैं तो हम कहते हैं चार छः तो आयतें याद करूँ, फिर गलत भी हो जाती है एक आधी, फिर हम अंदाज से, फिर हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कोई मखारज के साथ सलाम दुआ करूँ, फिर हम थोड़ी सी गर्दन सीधी करते हैं, फिर हाल हुलिया देखते हैं, फिर सर पे कोई टोपी पहन ले, कोई पगड़ी पहन ले, कि जब हम दीनदार लग, वी लुक लाइक दीनदार। नहीं, अल्लाह के नबी का अंदाज बहुत कॉमन था, और मेरी नज़र में अच्छा उस्ताद, अच्छा मेंटोर, अच्छा आलिम, चाहे वो UNO में खड़ा तकरीर कर रहा हो, उसकी बात सामने बैठों के लेवल की हो। उलमा में बैठे तो उलमा को बता दीजिए, और आम लोगों में बैठे तो आम लोगों का अंदाज हो। फिर इसी तरह से आप देखिए कि एक और चीज़, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को वाकई इम्प्रेसिव करना चाहते हैं, पुरकशिश करना चाहते हैं, आपको लोग कॉपी करें, लोग आपको फॉलो करें, तो उसके लिए आपको लोगों को नफ़ा देना पड़ेगा, आसानियाँ देनी पड़ेंगी। जो दूसरों को आसानी देता है ना, लोग उससे मुतासिर होते हैं। आप अपने बच्चों से कि येस इट्स पॉसिबल, यू कैन डू इट, आप उसको अपने साथ जायनमाज़ पे खड़ा कर लेते हैं, आप उस बच्चे के दिल में चले जाएंगे। और आपको खबरदार, बच्चे नहीं आते, जूता पहन के नहीं आते, हाथ गंदे, मेरा कुरान ना हाथ लगाना, ये नहीं, ये बच्चे इस कुरान से भाग जाएंगे, इनको नहीं अच्छा लगेगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कम्युनिकेटिंग स्टाइल, लोगों को वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो आपसे कम्युनिकेशन करें, डायरेक्ट बात करें। लोग कहते नहीं, हमारे पास तो आने से पहले आपको चार छः लोगों से बात करके टाइम लेना पड़ेगा, फिर अपॉइंटमेंट बनेगी, फिर भी हम आ जाएंगे तो बड़ा आपके सर पे एहसान होगा। क्यों भाई, आपके सर में सींग लगे हैं, जो चीज़ आपको 20 साल पहले मिल गई दूसरे को आज मिल रही है, तो आप अपने आप को इतना बड़ा क्यों समझते हैं। फिर इसी तरह से एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत ही मुतासिर कुन बनाना चाहते हैं ना, तो रिश्तों को निभाइए। अपने रिश्तेदारों को पीछे डालकर आप गैरों को दफा देंगे ना, तो सुन्नत से कटेंगे। अल्लाह के नबी की ये शान नहीं, देने की कोशिश सबको की, जिन्होंने नहीं ली ला तसरी वाले को मिल जाओ। कहते कि हर रिश्ते के पांव होते हैं, हमारे रवैयों की वजह से या तो वो हमारे करीब आ जाते हैं या हमसे दूर चले जाते हैं। तो अब आप दीन के काम करें, दीनदार हो गए हैं ना, जो आपको ससुराल से बात करने की ज़रूरत है, घर वालों के लिए तो टाइम ही कोई नहीं, भाई बहन तो भूल ही जाएं, क्योंकि हम बड़े नेक हो गए, नहीं बनेंगे नेक। ये जो आर्टिफिशियल स्टाइल है ना हमारे दीनदार होने का, इसको भी बदलने की ज़रूरत है आज के दौर में। अल्लाह का हुक्म समझ कर रिश्तों को निभाइए, ये भी इबादत होगा। और फिर इसी तरह से आप देखिए कि कुछ और भी लोग हैं, और वो क्या, जिनके इर्द गिर्द बहुत टैलेंटेड लोग नहीं होते। अब आप क्या करें, आप कहते हैं देखा ना है ही बेकार, बच्चे बेकार, पहले मियाँ बेकार था, फिर बच्चे भी बेकार पैदा हो गए, मुझे तो आज तक ज़िंदगी में कुछ अच्छे ही नहीं मिले। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हमारी टीम नहीं अच्छी, ये सारी चीज़ें असल में हमारी काउंसलिंग्स में चलती हैं। कई जगह जाकर कोशिश करके मैंने तो अल्लाह को गवाह बनाकर दुनिया में जहाँ भी मैं गई, और माशाल्लाह लोग हर जगह बड़ी इज्जत मोहब्बत से बैठते हैं, तो जो उनके होते हैं ऑर्गेनाइजर्स कह लीजिए या किसी जगह काम करने वाले, फिर वो क्लोज सर्कट भी एक दो सेशंस रखते हैं। ये अलग बात है, उसमें वन डिश करके को 20-25 खानों की डिशें भी आ जाती हैं एंड पे, लेकिन वो कहते हैं कि आप हमारी टीम बताएं, ये काम नहीं करते, हमें वॉलंटियर्स नहीं मिलते, लोग डोनेशन नहीं देते। ये आम तौर पे मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें आप रैंडम थोड़ी सी बताना चाहती हूँ, ताकि जो लिया है उसको हज़म करें। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इससे बहुत मुख्तलिफ है अल्हम्दुलिल्लाह। ना आज तक किसी चीज़ की कमी हुई, ना माल की कमी है, ना लोगों की कमी है, बल्कि झगड़े ये पड़े होते हैं कि आज मैंने करना है, कल मैंने करना है, मुझे टाइम ही नहीं। अब लोग ये मैसेज करने लग गए मुझे भी, हमें टाइम नहीं मिलता, हमारी बारी नहीं आती, हमने सीखा तो हमें मौका नहीं दे रहे। तो मैं अपने साथियों से कहती हूँ और प्रोजेक्ट शुरू कर दें, मुझसे बुलवा लें, आप ना सुना करें, लेकिन मेरे 3 सेशन दिन में रख दें, 3 लोगों को मौका मिल जाए नेकी का। तो याद रखिएगा, एक ज़िंदगी का असूल बना लें, अगर ज़िंदगी में कहीं भी पहुँचना है, खोटे सिक्के अपने साथ रखिए। हम कहते हैं ये बेकार फेंक दो, जैसे वो चावल साफ करते हुए, ये रोड़ा है इसको निकाल दो, ये पत्थर है इसको निकाल दो, ये वो हस्क है वो जो वंड से होते हैं वो निकाल दो, पीछे साफ सुथरे चावल रखेंगे, कभी ना कीजिए। खोटों को भी साथ रखिए, रोड़ों को भी साथ रखिए, खोटे सिक्के बड़े जरूरी होते हैं आपके आगे निकलने के लिए। कई लोगों की निगाहों में हम भी खोटे हैं, ये भी याद रखें, इतनी को बड़ाई का दावा ना किया करें कि हम बहुत अच्छे काम करने लगे, फलां गुनाहगार, उसने कुरान नहीं पढ़ा, मेरी रिश्तेदार ऐसी, मेरी कज़न ऐसी, आप अपनी नज़रों में बड़े बने बैठे हैं, और जिनको आप कुछ नहीं समझते कि इनको तो काम ही नहीं करना आता, भाई नहीं आता उनको टेक्निकल काम, कुछ और दे दीजिए, ये आपकी समझ है, उनको नई माइक पे आके बोलना आता है, नहीं सीख सकेंगी, आप उनको लिखने का काम दे दें। असल लीडरशिप क्या होती है कि लोगों से उनकी मुताबिक काम लीजिए। अल्लाह के नबी की ये चीज़ मैंने बहुत सीखी है कि आपकी कामयाबी में और एक अच्छे मेंटोर और एक अच्छे इंस्पायरिंग लीडर होने में ये खूबी थी आपके पास कि आप काम उसको देते थे जो उसके काबिल हो। अच्छा, फिर क्या करें, मसलन आपके पास एक शख्स आता है, कहता है मुझसे कुछ काम ले लें, आप कहते हैं ले लीजिए, वॉलंटियर फॉर्म फिल करें, यही हमारा उसूल है। वो फॉर्म पे सब लिख दें आपको क्या आता है क्या नहीं आता। अब लोग कहते हैं जी मैं ग्रुप भी ले सकता हूँ, मैं टीचर भी बन सकता हूँ, मैं ये भी, यानी अमूमन लोग वो चीज़ें नोट करते हैं जिसका ताल्लुक एजुकेशनल चीज़ों से होता है, हालांकि ये इसके साथ भी बड़े काम है। वो कहता है जी मुझे ऑफिस वर्क भी आता है, आपको पता क्या करना चाहिए, 5-6 मुख्तलिफ काम उसको दें और थोड़ा सा दूर से रह के ऑब्जर्व करें, यकीन करें 1 हफ्ते में टैलेंट उभर आएगा। अब वो आया था आपके पास कह लीजिए कि ग्रुप लीडर बनने, आपने उसमें देखा तो उसकी तो राइटिंग स्किल इतनी प्यारी, आपकी तो अपनी वो स्किल नहीं जो उसकी है, आप 1 हफ्ते 10 दिन में समझ गए कि ये इसमें तो ये काम है, और ये जो ग्रुप लीडर बन रहा है ये नहीं बनेगा, या मिसाल है कि उसको माइक पे आके बोलना है एडमिन, नहीं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं, आप उसको राइटिंग का काम दें, यकीन करें वो उस पुर्जे में ढल चुका होगा कि जो हर स्पीच में आ जाएगा, आप उसकी लिखी हुई चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। एक दिन लोग अपनी असल पे आ जाते हैं, जो नहीं करना काम किसी को आज के बाद हटाना नहीं अपने पास से, सिर्फ ये कहकर ये खोखला है। देखिए मैंने बहुत पहले एक बात सुनी थी, अब मैं भी चाह रही हूँ आप भी रिलैक्स हों, ताकि अगर इस वक्त कम्युनिकेटिंग स्टाइल होता तो आप लोग ज़्यादा इन्जॉय करते। बस आप देखिए कि एक बाबा जी थे, बड़े नेक भी थे और अच्छे थे, लोगों को उधार दे दिया करते थे। एक दफ़ा उनके पास एक शख्स आया, पोटली थी उसमें कुछ जेवरात थे, कहने लगा जी बुजुर्गों मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, ये मेरे बीवी के जेवर हैं, ये आप रख लीजिए और मुझे बस 5 लाख रुपया दे दीजिए, बस 3 माह में या 2 माह में आऊँगा तो जेवर ले जाऊँगा और पैसे दे जाऊँगा। ये तो वैसे उधार देने वालों में से थे, अब तो वो जेवर भी ला रहा है, खैर कहा ठीक है ले आइए, जानते नहीं थे उसको पहले से। खैर, जिन्होंने नेकी करनी होती वो ज़्यादा हिसाब किताब नहीं मांगते। मुलाजिम को कहा, जाओ भाई वो गले में से 3 लाख ला के दे दो और ये सोना अंदर रख दो। अब वो 1 माह गुजरा, 2 गुजरे, 3, क्या 5 माह गुजर गए। एक दिन इनको भी कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो वो शख्स याद आया, आया ही नहीं, ना कोई रबता, ना पता, ना कुछ। खैर, किस्सा मुख्तसर। अपने मुलाजिम को कहने लगा, जाओ गले में से रखे हुए जेवर लाओ, तो अब तो हमारा हक है कि वक्त गुजर गया तो अब हम उसके बेच के अपने पैसे ले लेते हैं। वो जेवरात की पोटली उसने ज्वेलर के पास भेजी कि भाई ये ले लो और पैसे दे दो। जब उसने खोली, देखी, परखी, उसने कहा कि ये तो सारे खोटे हैं, इसका तो 1 रुपया नहीं मिलेगा। अब उस बुजुर्ग के लिए ये एक बहुत बड़ा धोखा था, एक ये बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि देखिए जब आप किसी के साथ सिंसियर हो और उसको हर चीज़ देते हैं, ये भी लीजिए, ये भी लीजिए, आपको इस पर भी इंसिस्ट करते हैं, आप जो मांगेंगे आपको देंगे, बाद में पता चला कि उसकी तो नीयत ही ख़राब थी। खैर, अब वो उनके लिए एक मेंटल टॉर्चर था कि मेरे साथ हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि धोखा खाना कोई पसंद नहीं करता। लेकिन जब आखिरी जुमले देने लगी ना इस वाक्य के, वो नोट कीजिएगा, उन्होंने अपने उसी वो फज्जा शज्जा कोई भी होगा ना मुलाजिम, उसने कहा, जी अब क्या करना है बुजुर्गों? कहने का, करना ये है कि ये जेवर की जो पोटली है ना, इसको गले में नहीं रखना, इसको वो सामने शोकीस है ना, उसके अंदर से जा दो, ये करना है, ये कीजिए अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हैं। वो लोग तो दिल के अंदर रहते थे ना, आपने उनको सच्चा समझा हुआ था, खरे हैं, अपने हैं, अगर वो किसी एक दो हरकत से साबित कर देना कि वो आपके नहीं, तो आप उनको सामने से जा लें कि वो मुरव्वत का ताल्लुक रख लें, सलाम दुआ हाल चाल कैसे, वो कीमती नहीं है कि आप उनके लिए गल्ला खोलें। ज़िंदगी में ये कीजिए, लोगों को काटने तोड़ने फोड़ने की बजाय उनसे रस्मी ताल्लुकात कभी ना तोड़िए। अल्लाह के नबी इसकी बहुत ही प्यारी मिसाल थे। फिर इसी तरह से एक और चीज़ भी नोट कीजिएगा, ज़िंदगी में अगर आप वाकई एक पुरअसर शख्सियत बनकर ख़ास तौर पर अपने दीन को फ़ायदा देना चाहते हैं ना, तो एक काम कर लें, और वो क्या है कि अपने अंदर खूबियों को बढ़ाएं। एक जुमला नोट करिए, जम बना लें बेशक, अल्लाह जिसे कोई मुकाम देता है ना ज़िंदगी में, पहले उसको खूबी देता है जी, और अगर बग़ैर खूबी के आपको कोई मुकाम मिल ही गया ना, तो इबरत का निशान बन जाएंगे। कुछ लोगों में खूबियाँ नहीं होती, पर उनको कोई टाइटल मिल जाता है, कोई नाम मिल जाता है, और जब करने का वक्त आता है आता ही नहीं करना, खूबी है नहीं तो दूसरे कहते तौबा तौबा, इतना बुरा काम किया, आपने किन को जिम्मेदारी दे दी, आपने किन को जिम्मेदार बना दिया। फिर एक और सवाल जो बहुत ही अहम है ज़िंदगी में, और वो क्या है कि एक दफ़ा जिससे हाथ मिला लिया ना, अब वो हाथ छुटेगा नहीं, बल्कि बस जब दोनों में से कोई एक पहले जाएगा ना, वो दूसरे को दफना दे या उसके लिए दुआ कर ले। ज़िंदगी की बस में से पुराने साथियों को मत निकालें, या वो आपको दफनाएगा या आप उसको दफनाएगा, यानी रिश्ते आखिर तक निभाइए और उम्मीद कीजिए कि जन्नत में मिलेंगे। इस काम में बहुत जगह बीच में मुखालफतें होती, गलत फहमियाँ होती, क्योंकि काम बड़ा कीमती है, इतनी कीमती डॉक्यूमेंट जाने हो तो बग़ैर सिक्योरिटीज़ के कोई गाड़ी में जाने देगा? आपके दिलों में, दिमागों में एक दूसरे के बारे में, कभी साथ काम करने वाले, कभी छोटे कभी बड़े, हर वक्त जंग लगी होगी आपके इंस्टीट्यूट में, अगर आपने इस बात को ना समझा। और वो क्या है कि साथ नहीं छोड़ना, काम बदल दिए, हदें बदल लीजिए, रोज़ मिलते थे हफ्ते में एक दिन मिल लीजिए, गले मिलते थे तो हाथ मिला लीजिए, लेकिन ये कभी ना कीजिए कि छोड़, क्यों कि आप किसी को ज़ख्मी करके छोड़ते हैं ना तो वो शेर बन जाता है। फिर इसके बाद एक और चीज़ लिखिए, और वो क्या कि दोस्तियां भी निभाएं मगर एक खास हद में रहकर, रिश्ते भी निभाएं तोड़ने नहीं है, खून का रिश्ता खून का ही होता है, क्योंकि ब्लड इज थिकर देन वाटर। अपने इर्द गिर्द वालों को आप बड़ा ही ठंडा देखते हैं, अब क्या करें? ये मेरे पास ना कुछ सवाल थे, मैं उन्हीं के सारे जवाब सोच के बैठी थी कि चले आपके भी शायद यही इश्यूज हों। किसी का एक सवाल था कि क्या दूसरों को मोटिवेट करना, अब हर वक्त मोटिवेट ही करते रहे, क्या मोटिवेशन टेम्परेरी काम है या परमानेंट सोल्यूशन है? ये आपका भी मसला होगा, मसलन आप किसी जगह कोई मतलब मिसाल है कोर्स के ज़िम्मेदार हैं, अब आपके अंडर माशाल्लाह 50-60 लोग काम करते हैं, एक एक कोर्स के अंदर आपको तब 50-60 से ज़्यादा लोग होते हैं कम से कम, ज़्यादा लोग आते थे तो और भी होंगे। वो कहते हैं क्या वो ये ग्रुप लीडर ठंडे हो गए हैं, ये रिपोर्ट नहीं देते, और ये जो हैं फुलां फुलां सो, जो भी आप कहीं भी काम करें आप उसको सामने रख लीजिए, तो क्या अब हम हर वक्त बैठकर मोटिवेट ही करते रहें? तो इसका जवाब लिखिए, देखिए मोटिवेशन का हमेशा फ़ायदा होता है, कुछ को वक्ती फ़ायदा होता है, कुछ को देर पर। मसलन अगर आप 100 लोगों में बैठे हैं, आप उनको कोई मोटिवेशनल टॉक देते हैं, 20-30% लोग वक्ती तौर पे बहुत असर ले जाते हैं, बाद में भूल जाते हैं. रियली 2-4 दिन बड़े गर्म रहेंगे, दौरे कुरान से बहुत मोटिवेशन मिला, रोज़ सेशन सुन रहे हैं बड़ा फ़ायदा हो रहा है. अब आप रोज़ ना दें मसलन, आप ही कहीं चले गए हज पे चले गए मसलन, तो 1 महीना आप कुछ ना दे सके तो ठंडे हो जाएंगे. याद रखिए, जुमला लिख लीजिए, 100 में से 2-3 ज़रूर निकल आएंगे जो अगली नस्लों के लिए फिर मेंटोर बन चुके होंगे. तो लिहाजा अल्लाह तो नबी को भी कहता है हर दिल मोमिनीन अलल क़िताल, आप इनको लड़ने की अल्लाह के रास्ते की जिद्दोजहद की कोशिश करते रहें. फिर एक और चीज़ जो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में तो बहुत ही ज़्यादा थी, और वो क्या थी कि आपने मेहनत और लगन से काम करना सिखाया. आप देखिए कि ग़ज़वे खंदक के मौके पे आपने खंदक खोद के दिखाई, जिसको आप कह सकते हैं इम्पॉसिबल किस्म का टारगेट था, आपने उसको पॉसिबल करके दिखाया. तो ख़ुद भी मेहनत कीजिए, दूसरों को कराइए. आप अगर 5-6 घंटे अपनी उस जॉब को एक्स्ट्रा नहीं दे सकते जो आपको किसी भी दीन के काम की दी गई है, तो एक्सेप्ट ही ना कीजिए. क्योंकि उस्ताद जो है ना, कहते हैं किसी की बात बहुत पहले पढ़ी थी, कहते हैं उस्ताद 3-4 घंटे का नहीं होता, 24 घंटे का उस्ताद होता. अगर पे देनी है ना घंटों की, तो 24 आवर का ज़रब लगा कर दीजिए, क्योंकि वो 2-3 घंटे तो पढ़ा रहा होता है, तो बाकी जो 21-20 घंटे हैं ना, वो सोच रहा होता है, प्लान कर रहा होता है, तैयारी कर रहा होता है, और उसके लिए ना जाने क्या कुछ करता है. तो मेहनत की आदत डालिए. फिर एक और चीज़, शौक़ और जज्बे उभारिए, बहुत ज़रूरी है. अगर आपके साथियों में शौक़ नहीं है ना, जज्बा नहीं है, तो आप अकेले रह जाएंगे. अच्छा मेंटोर या अच्छा शख्स वो नहीं होता कि जो खुद ही काम करने लग जाए और दूसरे ठंडे बैठे हैं, ये अकेले ही भाग दौड़ कर रहे, नहीं. और याद रखिए, आप ना कहें उनको कुछ करने को, उनका शौक़ कहे. इसको एक बड़ी प्यारी एक रिवायत है गालिबन के, शौक़ मेरी सवारी हो. शौक़ की सवारियों से बंदे दूर तक पहुँच जाते हैं, और शौक़ के जज्बे ना तो एक इमारत में से निकल कर दूसरे कमरे में नहीं लोग आते. फिर इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत अगर आपकी टीम में नहीं है ना, तो वल्लाह ही आपकी मोहब्बत ज़्यादा दिन काम नहीं कराएगी, क्योंकि ठंडी हो जाती है. हम भी फ़ानी, हमारी मोहब्बतें भी फ़ानी. जिससे मोहब्बत है उससे जुड़ कर रहें, इससे आपको मजबूती मिलेगी इंशाअल्लाह ताला. फिर इसी तरह कभी कभी आपके साथ, जैसे मैं से माँ है तो उसके बच्चे हैं, लड़ाई हो गई, इंसाफ का साथ दीजिए. जिस साथी की गलती है उसका मुहासबा कीजिए, और जिस पे जुल्म हो रहा है उसका साथ दीजिए. अच्छा, कभी पूरी नहीं होती, आधी होती, यानी इस पे फिर हिकमत मांगिए. ना कोई 100% एक जगह सच्चा होता है, और ना कोई 100% झूठा होता है. हक़ को तस्लीम कीजिए और सच का साथ दीजिए. इसमें भी चंद चीज़ें आपको मैं कामयाबी की दे दूँ तो बहुत ही फ़ायदा हो सकता है आपको. कल का मेरा टॉपिक बहुत ज़्यादा, कह लीजिए एक ऐसा टॉपिक है, उस असूल के बग़ैर कामयाबी मुमकिन ही नहीं है, फॉरगिव फॉरगेट. लेकिन यहाँ आपको चंद पॉइंट्स देती हूँ कि अगर आप वाकई एक अच्छे मुअस्सर लीडर बनना चाहते हैं, आप एक मेंटोर हैं लोगों के लिए, तो आपको नंबर एक एक्नॉलेज कीजिए, अपनी टीम के छोटे से छोटे फ़र्द की खूबी को एक्नॉलेज कीजिए. फर्स्ट स्टेप, एक्नॉलेज देम. छोटे बच्चे की भी करें एक्नॉलेज, माशाल्लाह तुम्हें देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है, फिर मैं बहुत अच्छा पढ़ती हूँ, फिर पढ़ाती हूँ, आपने चाय बनाई, क्या मज़े की चाय बनाई. अच्छा, हम क्या करते हैं, बनानी नहीं थी, आज दूध ज़्यादा नहीं डाल दिया, कैसी कर दी, कड़वी नहीं, ठंडी नहीं होगी, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह. यानी अगर आप साथ मिल के चाहते हैं कि आपके 100 लोग काम करें, और यकीन करें मैं सदमे से कहने लगी हूँ, कुछ लोगों की नाकामी के पीछे वजह यह, उनको टीम नहीं बनानी आती, अकेले काम करने में खुश मस्ती मज़ा, और फिर गिनते हैं बैठ कर, सारे काम खुद करते हैं, खेले रह जाएंगे आप, कभी नहीं बढ़ेगा आपका काम आगे. अच्छा, आप करें क्या, क्योंकि वो मन मन शो है, हर जगह मेरा नाम, चाबियाँ मेरे हाथ में, और वो गुच्छे मेरे हाथ में, और चमचा मेरे हाथ में, और सब्जी दाल का भाव मुझसे पूछो. ये ऐसी सांसें, फिर अकेली रह जाए, फिर बाबा कहती हैं अच्छा अम्मा पका के मुझे आवाज़ दे दीजिएगा, और फिर बल्कि नखरे करती हैं, अम्मा आज ऐसा नहीं, अच्छा नहीं बना, और वो बाद में खपती हैं, हाँ पहले भी खुद ही काम करती थी, अब भी खुद ही करती हैं. तो लोगों को एक्नॉलेज कीजिए. फिर सेकंड स्टेप क्या है कि अप्रिसिएशन कीजिए, अप्रिशिएट देम. थोड़ा सा भी कोई आपके लिए काम कर दे ना, आप देखिए ना, सब तरह के तो काम होते हैं. अब मैं ये सारा इल्मी काम तो नहीं कह रही, कोई आपके कपड़े धो देता है, कोई आपको खाना खिला देता है, कोई आपकी ये मिसाल है कि स्कूल में अगर हैं तो बच्चों को देख लेते, अप्रिशिएट करें, माशाल्लाह आपने आज ऐसा अच्छा बच्चों को देखा, एक बच्चे की आवाज़ नहीं आई कमरे में, बस देखिए, बाज़ दफ़ा लोगों को हमसे हज़ारों नहीं चाहिए होते, लाखों नहीं चाहिए होते, उनको सिर्फ दो बोल अप्रिसिएशन के चाहिए होते। जज़ाकअल्लाह, एक छोटा सा नोट, एक स्माइल, एक फ्लावर, एक दुआ, ये वो वजह जिसकी वजह से जापानी लोग अपनी जॉब को छोड़कर जाना इसको बेवफाई समझते हैं। वो कहते हैं, लोग कहेंगे कि इतनों को छोड़कर हमारे पास आए हैं तो ये तो बेवफा है। तो जिसके बने उसके गुण गा जाए बस। फिर एक तीसरी चीज़, पॉजिटिव फीडबैक। जो कोई करे पहले देख लीजिए उसने किया ना, पहले तो खूब तारीफ करें उसकी, अच्छी दुआएं, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वेरी गुड, एक्नॉलेजमेंट को अप्रिसिएशन में बदलें। फिर आखिर ज़रा सा कुछ वक्त गुजर जाए, फ़ौरन नहीं, 15-20 आधा घंटा टाइम दे के फिर उसको फीडबैक, ये बहुत अच्छा था लेकिन ऐसे और भी अच्छा होता। तो ये जो आप अपने बच्चों को, खुद को और अपने साथियों को फीडबैक देते हैं, इससे फिर इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और फिर उसके बाद अगला मरहला है कोचिंग का, उनकी कमियों को पूरा करने के लिए अब सिखाइए कि बेटा तुम्हें और भी अच्छा किया जा सकता है, यू विल बी पॉलिश, आप ये कोर्स कर लेना आप बहुत चमक जाएंगी, आप ज़रा अपनी तजवीद बेहतर कर लें आप और अच्छी हो जाएंगी। ये कहने से लोगों के अंदर आप जज्बा डालते हैं मज़ीद सीखने का, और आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा आप पीछे से उनके पुश्त पे हाथ फेरते रहेंगे ना, उतना ज़्यादा फिर लोग आगे से आगे बढ़ेंगे। ये क्या बात है कि आपके कहने पे, क्योंकि यस ओके बिल्कुल जजाकला, और दूसरा के तो आगे से घुरियाँ डालें, क्योंकि आपको दूसरों को अपने दिलों में जगह देनी, प्यार करें। मोमिन मोहब्बत करता भी है और उससे मोहब्बत की जाती है। और याद रखिए, जो अपने काम से मोहब्बत नहीं करता ना, वो किसी जगह मोहब्बत नहीं किया जाता। जो अपने काम की इज्जत नहीं करता उसकी कभी इज्जत नहीं होगी, और जो अपनी जॉब की इज्जत नहीं करता उसको ज़रूर कोई ऐसी जॉब करनी पड़ेगी जिसमें उसको अपनी तजलील महसूस होगी। और जितना ज़्यादा दूसरों को करीब रखेंगे फ़ायदा होगा। कहते हैं कि इज्जत कमेटी की तरह होती है, देता कोई है निकलती कहीं है। तो आज आप लोगों को देना शुरू कर दें, फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह आखिरी बातों में से एक बात, क्योंकि अब हमारे पास वक्त पूरा हो चुका है, कि आपने मैंने अभी मज़ीद सीखना है। बहुत सारे काम आपकी मेरी ज़िंदगी में हैं, अपने अंदर अच्छी खूबियाँ डालेंगे, अल्लाह आपसे अच्छे काम कराएंगे, मालिकों वाली आदतें पैदा कर लें, अल्लाह आपको मालिक बना देगा, मुलाजमीन वाली खूबियाँ रखेंगे तो सारी ज़िंदगी मुलाजिम रहेंगे, और अल्लाह के निज़ाम में ना डिग्रियाँ चलती हैं ना सर्टिफिकेट चलते हैं, अल्लाह तो तड़प देखता है। एक अदना सा सिपाही है और उसको अल्लाह ताला अमीर तैमूर बना देता है। वजह किरदार थी, किरदार की ज़रूरत है। इस वक्त हमें लफ्जी तर्जुमों की ज़रूरत नहीं, तजवीद की ज़रूरत नहीं, ग्रामर की ज़रूरत नहीं, हमें वो किरदार बन के दिखाना है कि लोगों की फसलें तैयार हों। हम कोई गोभी की फसल या धनिए की फसल लगा कर नहीं बैठ रहे, ये नस्ल साजी का काम है। और याद रखिए, इन कोशिशों के नतीजे अगले 20 सालों में निकलेंगे कम से कम। अल्लाह ताला आपको मुझे खूबियाँ दे, फिर उन खूबियों के मुताबिक हमें मुकाम मिले, और उन मुकाम को, उन कामों को, उन जिम्मेदारी लाइबिलिटीज को करते करते दुनिया से चले जाएं। ऐसा ना हो कि हमें ऐसा काम मिल जाए जो बाद में काम देने वाला भी तौबा करे कि आज के बाद इनको मैंने ये काम नहीं देना। जज़ाकुमुल्लाह खैर, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।